नमस्कार, संयुक्त राष्ट्र समाचार के साथ मैं सचिन गौड़। 18 अक्टूबर 2019 के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में सुनिए, विश्व में गरीबी उन्मूलन के लिए बच्चों, उनके परिवारों व समुदायों को सहारा जरूरी, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस पर पुकार। एक ओर भुखमरी से पीड़ित 82 करोड़ लोग, तो वहीं बेतहाशा भोजन से पैदा होती जा रही हैं स्वास्थ्य समस्याएं। भोजन की बर्बादी भी बनी चिंता का सबब। टीबी यानी तपेदिक के मामलों में पिछले साल दर्ज हुई गिरावट, लेकिन फिर भी 15 लाख लोगों की मौत का ये है कारण। और हेती में 15 वर्षों से चला आ रहा संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा अभियान समाप्त। आपको याद दिलाते चलें कि खबरों को विस्तार से पढ़ने और खास रिपोर्टों और इंटरव्यूज को सुनने और देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी आ सकते हैं। पता है news.un.org/hi। अब समाचार विस्तार से। विश्व में अभूतपूर्व आर्थिक विकास, तकनीकी प्रगति और वित्तीय संसाधनों के बावजूद एक बड़ी आबादी के लिए गरीबी में जीवन यापन करना दैनिक जीवन की सच्चाई है। गरीबी का अंत उन 17 टिकाऊ विकास लक्ष्यों में भी शामिल है जिन्हें 2030 तक हासिल किया जाना है, ताकि इससे पीड़ित लोगों को गरिमा के साथ जीवन गुजारने का अवसर मिल सके। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के जरिए ध्यान दिलाया गया कि अगर वैश्वीकरण से सभी बच्चों, उनके परिवारों और समुदायों को लाभ नहीं पहुंचा, तो सभी के लिए एक टिकाऊ भविष्य का निर्माण कर पाना संभव नहीं होगा। ज्यादा जानकारी के साथ यूएन हिंदी न्यूज के प्रमुख महबूब खान।
अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस हर वर्ष 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व में 70 करोड़ से ज्यादा लोग प्रतिदिन $2 यानी लगभग 140 रुपए से कम में जीवन यापन करने के लिए मजबूर है, और ये दिवस उन्हीं के जीवन संघर्ष को रेखांकित करता है। महासचिव अंतोनियो गुटेरेश का कहना है कि चरम गरीबी को समाप्त करना, टिकाऊ विकास लक्ष्य हासिल करने और सभी के लिए टिकाऊ भविष्य का निर्माण करने के प्रयासों के केंद्र में है, लेकिन किसी को भी पीछे ना छूटने देने के प्रयासों में सफलता तब तक दूर रहेगी जब तक उन लोगों को पहले सहारा नहीं दिया जाता जो सबसे पीछे छूट गए हैं। यूएन प्रमुख ने बताया कि इस वर्ष बच्चों, उनके परिवारों और समुदायों को सशक्त बनाने के लिए कार्रवाई पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि इसी वर्ष बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संधि को 30 वर्ष पूरे हुए हैं। उन्होंने ध्यान दिलाया कि वयस्कों की तुलना में बच्चों के चरम गरीबी में रहने की 2 गुना आशंका होती है, जिसके दुष्परिणाम उन्हें जीवन पर्यंत झेलने पड़ते हैं और उनकी अगली पीढ़ी भी इससे प्रभावित रहती है। लड़कियों को विशेष रूप से इस समस्या से खतरा होगा, लेकिन यूएन प्रमुख के मुताबिक उनके पास बदलाव लाने का बल भी है। उनका कहना था कि एक लड़की द्वारा स्कूल में हर एक साल अतिरिक्त गुजारने पर जीवन काल में उनकी औसत आयु बढ़ती है, उसकी जल्दी शादी होने की संभावना घटती है और उसके बच्चों के लिए स्वास्थ्य व शिक्षा में लाभ मिलता है।
विश्व में एक ओर जहां बेतहाशा भोजन से मोटापे की समस्या बढ़ती जा रही है, तो दूसरी ओर पर्याप्त भोजन के अभाव में लोग भुखमरी में रहने के लिए मजबूर हैं। 82 करोड़ से ज्यादा आबादी के पास पेट भरने के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं है। बढ़ता वजन और मोटापे की समस्या स्वास्थ्य के लिए कई चुनौतियां खड़ी कर रही है, जिसके मद्देनजर इस वर्ष विश्व खाद्य दिवस पर भुखमरी से लड़ाई के अलावा सेहतमंद आहार की जरूरत को भी रेखांकित किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने अपने संदेश में भुखमरी मिटाने और एक ऐसी दुनिया बनाने की पुकार लगाई है जहां पौष्टिक भोजन हर जगह सभी के लिए उपलब्ध हो।
It is unacceptable that anger is on the rise at a time when the world wastes more than 1 billion tons of food every year.
महासचिव गुटेरेश कह रहे थे कि एक ओर भुखमरी का सामना कर रहे लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर हर साल दुनिया भर में 1 अरब टन से ज्यादा भोजन बर्बाद कर दिया जाता है, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेश के शब्द। उन्होंने जोर देकर कहा कि मानव समाज का हिस्सा होने के नाते भुखमरी से मुक्त दुनिया हम सबकी जरूरत है। पोषक भोजन जैसे फलों और सब्जियों की पैदावार के लिए किसानों को प्रोत्साहन देने के बजाय कई देश कम पोषण वाले खाद्य पदार्थों जैसे गेहूं, चावल, मक्का को सब्सिडी दे रहे हैं। इससे पोषण और आहार की विविधता पर असर पड़ रहा है। गरीब देशों में अंडा, दूध, फल और सब्जी के दाम ज्यादा होते हैं, जिससे गरीबी में घिरे लोग उनका सेवन नहीं कर पाते। स्वास्थ्य के लिए खराब खुराक से हृदय रोग, डायबिटीज और कुछ प्रकार के कैंसर का शिकार होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जिसका असर राष्ट्रीय स्वास्थ्य बजट पर भी पड़ रहा है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एजेंसियों ने स्वस्थ और पौष्टिक आहार को सभी के लिए सस्ता और सुलभ बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। साथ ही एक नई रिपोर्ट जारी कर भोजन की बर्बादी रोकने को भी अहम बताया है। हमारी सहयोगी अंशु शर्मा ने इसी सिलसिले में भारत में खाद्य एवं कृषि संगठन कार्यालय में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन विशेषज्ञ सीमा भट्ट से बातचीत की और इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं के बारे में पूछा।
दो तीन उसमें चीजें हैं। खैर, एक तो सबसे बड़ा तो ये है कि ये जो अनहेल्दी डाइट की हम जो बात करते हैं, जो मैंने अभी बात की, जो पोषण से लिंक्ड है, बहुत सारी चीजें जो है पहले लोग खाते थे, अब नहीं खाते। मैं आपको एक उदाहरण दूंगी। तीन ही केवल हमारे यहाँ उपज है, राइस, मेज और वीट। 60% हमारा जो न्यूट्रिशन है, कैलोरीज है, वो तीन क्रॉप से आता है। और पहले क्या होता था, पहले बहुत सारे जैसे ज्वार होता था, बाजरा होता था, जो बहुत न्यूट्रिशियस है, वो अब धीरे धीरे चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। और इसीलिए इस बार का जो रिपोर्ट रिलीज़ हुआ है, उसमें सबसे बड़ा एक ये है कि अनहेल्दी डाइट्स हैं और हमारी लाइफस्टाइल है और हमारी खुद की फूड चॉइसेस हैं। और एक जो बहुत बड़ा मुद्दा इस अब की जो रिपोर्ट में आया है, वो है कि खाना हम लोग उपज उगा रहे हैं, पर बहुत सारा उसमें वेस्टेज है। और ये वेस्टेज जो है वो कई तरह से शुरू से होता है। सबसे बड़ा वेस्टेज हमारी जैसे देशों में, डेवलपिंग कंट्रीज में, स्टोरेज में होता है। स्टोरेज ठीक तरह से नहीं होता है और चीज़ें जो उपज हम लोग उगा रहे हैं, चीज़ें सड़ जाती हैं।
हेल्दी डाइट्स और एग्रो बायोडाइवर्सिटी, यानी कि कृषि में जैव विविधता, इन दोनों को कैसे जोड़कर देखा जा सकता है? दोनों में क्या लिंक है?
लिंक ये है कि हमारी जो कृषि की जो जैव विविधता है, आप चावल को ही देख लीजिए, आज क्या है डिमांड बासमती चावल की है। बाकी बहुत सारे चावल की वेराइटीज है इंडिया में, जो है 10,000 से ज्यादा वेराइटीज होती थी चावल की। तो जैसे हम लोग हर जगह आप चले जाइए देश में, कभी भी किसी कोने में, इस तरह ये वाला त्योहार होगा तो ऐसी खीर बनेगी। इसीलिए एक चावल की मात्रा उगाई जाती थी। नॉर्थ ईस्ट में आप चले जाइए, एक काला चावल होता है, उसकी खीर खास बनती है। अलग तरह के, जैसे हम बाजरे के और मिलेट के लड्डू बनाते थे। दीज आर ऑल लिंक्ड, दीज आर ऑल ट्रेडिशंस। और इसमें एक कारण होता था, क्योंकि जो अलग अलग तरह की वेराइटीज जो उगाती जाती थी, कोई ड्राउट रेजिस्टेंट होती थी, कोई ज्यादा वाटर लॉक्ड एरिया में उगती थी। इसीलिए जैव विविधता जो कृषि में है वो बहुत आवश्यक है। और इसका खाद्य और पोषण के साथ बहुत बड़ा लिंक है। बड़े स्तर पे देखा जाए तो इसका क्लाइमेट चेंज के साथ बहुत बड़ा लिंक है।
तो आपको क्या लगता है, ये जो जैव विविधता है, हम इसे क्यों खोते जा रहे हैं?
ऐसा है, देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ तब फूड की बहुत आवश्यकता थी, तो फूड प्रोडक्शन वॉज द प्रायोरिटी, तब जाके हरित क्रांति हुई। उससे क्या हुआ कि केवल वही वाली प्रजातियों को सपोर्ट मिला जो कि हाईली प्रोडक्टिव थी। उससे हमारी जो देश है, इट डिड बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड प्रोडक्शन। पर हुआ क्या कि मोनोकल्चर्स ज़्यादा हुए, अब राइस, वीट, मेज। अब उसमें राइस की भी कुछ ही प्रजातियाँ, गेहूं की भी कुछ ही प्रजातियां जो कि हाई प्रोड्यूसिंग थी, वही वाली प्रजातियों को प्रमोशन दिया गया। इसीलिए धीरे धीरे करके इन क्षेत्रों में हमारी जैव विविधता खत्म होती गई। ये एक कारण है, ये केवल एक कारण। ग्लोबली भी मोनोकल्चर्स आर बीइंग प्रोड्यूस, ऐसा नहीं है, ग्लोबली डिमांड है। आजकल बासमती राइस की डिमांड ग्लोबली है। अब नेचुरली जिसकी डिमांड होगी उसी चीज़ को आप प्रोड्यूस करोगे, बिकॉज फाइनली फार्मर नीड्स अ प्रॉफिट। पर जब तक आप मार्केट नहीं लिंक्स, इसको लिंक नहीं करोगे, ये जैव विविधता हमारी धीरे 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 खत्म होती जाएगी। हाँ, अब एक ट्रेंड आया है दैट इट इज वेरी फैशनेबल टू ईट रागी, आप रागी सीरियल खा रहे हो, अच्छा ट्रेंड है, क्योंकि इससे हमारी जो प्रजातियां लुप्त होती जा रही है वो शायद बच जाए।
तो खाने में पोषण रहे और हेल्दी डाइट सबको मिले, इस ये सुनिश्चित करने के लिए क्या चीज़ें हैं जो FAO जिनकी तरफ देख रहा है और किस तरह इस चुनौती से निपटने का समाधान मिलेगा?
FAO की बहुत सारी ऐसी प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हम इसको प्रमोट कर रहे हैं। एक हमारा अभी एक खास करके कृषि जैव विविधता को लेके एक प्रोजेक्ट FAO का चल रहा है 3 states में, एंड वी हैव टेकन पंजाब, क्योंकि पंजाब में ऐसा नहीं है कि अवेयरनेस नहीं है, पंजाब में भी अवेयरनेस बढ़ रही है, क्योंकि हाई प्रोड्यूसिंग कृषि के साथ आप हाई इनपुट्स भी डालोगे, केमिकल इनपुट्स डालोगे, केमिकल्स डालेंगे, फर्टिलाइजर्स डालेंगे, पेस्टिसाइड्स डालेंगे, तो उससे भी हेल्थ इम्पैक्ट्स बहुत है, नेगेटिव इम्पैक्ट्स। पंजाब is beginning to realize that. So Punjabi cha raha hai ki let's look at something else. So we are promoting that. We are promoting in Punjab, Kerala and Mizoram. So FAO ki kai projects mein ek cross-cutting issue hai humare liye to ki poshan sabke saath hona chahiye hai, healthy diets honi chahiye, krishi jaivivita badhni chahiye. And finally, low input farming. Organic to bilkul high level ka hai because you need to be certified. But at least shuruaat to hum low input se karein. And then you move towards organic.
प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन विशेषज्ञ सीमा भट्ट से बात कर रही थी हमारी सहयोगी अंशु शर्मा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि वर्ष 2018 में टीबी यानी तपेदिक बीमारी के कारण 15 लाख लोगों की मौत हुई, जो दर्शाता है कि इस बीमारी से निपटना अब भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। अनुमान है कि 2018 में टीबी संक्रमण के 1 करोड़ मामले सामने आए। टीबी बीमारी के मामलों में गिरावट तो दर्ज की गई है, लेकिन निम्न आय वाले देशों में और वंचित जनसमूहों में टीबी संक्रमण का खतरा भी बना हुआ है। यूएन एजेंसी ने अपनी नई रिपोर्ट में इस बीमारी के उन्मूलन के लिए ज्यादा संसाधन का निवेश किए जाने और राजनीतिक समर्थन की आवश्यकता को रेखांकित किया है। इस रिपोर्ट पर जानकारी साझा कर रही हैं शिवानी काला।
माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम के बैक्टीरिया की वजह से टीबी संक्रमण होता है, जिसके लक्षण लगातार खांसी, थकान और वजन गिरने के रूप में सामने आते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2018 में टीबी संक्रमण के 1 करोड़ से ज्यादा मामले सामने आए और 30 लाख से ज्यादा ऐसे पीड़ित हैं जिनकी आवश्यकता अनुसार देखरेख नहीं हो रही है। इस बीमारी से सबसे अधिक प्रभावित देशों में चीन, भारत, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। यूएन स्वास्थ्य एजेंसी ने बताया कि टीबी बीमारी के भारी बोझ से पीड़ित ब्राजील, चीन, रूस और जिम्बाब्वे में वर्ष 2018 तक उपचार का स्तर 80% तक पहुंच गया है। आंकड़े दर्शाते हैं कि टीबी से बुरी तरह प्रभावित देशों में 80% से ज्यादा मरीज अपनी कमाई का 20% हिस्सा उपचार पर खर्च करते हैं। इलाज में दवाई का असर ना कर पाना एक नई चुनौती है और वर्ष 2019 में टीबी के 5 लाख से ज्यादा ऐसे मामले सामने आए जिनमें इलाज के दौरान दवाई ने काम नहीं किया। सितंबर 2019 में न्यूयॉर्क में बैठक के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्षों ने सभी के लिए स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने और संचारी रोगों जैसे टीबी, एचआईवी और मलेरिया से निपटने का संकल्प लिया था।
संयुक्त राष्ट्र ने शुक्रवार को बताया कि तुर्की की सेनाओं और सीरिया समर्थित कुर्दिश सेना के बीच युद्धक गतिविधियां रोकने का समझौता होने के बावजूद तुर्की की सीमा से सटे इलाकों में बमबारी और युद्धक झड़पें जारी हैं। इस वजह से हजारों लोग शांति व सुरक्षा की तलाश में वहां से जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ महबूब खान।
इस सहमति को कुछ देशों ने युद्धविराम समझौता करार देते हुए इसका स्वागत किया तो कुछ ने 5 दिन के लिए युद्ध गतिविधियों को रोकने पर सहमति कहा। ध्यान रहे कि लगभग 9 दिन पहले तुर्की ने देश के दक्षिणी इलाकों में सक्रिय कुर्द लड़ाकों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू की थी। संयुक्त राष्ट्र की मानवीय सहायता कार्यों में तालमेल करने वाली एजेंसी OCHA के एक पदाधिकारी जेंस लायरके ने बताया कि युद्ध विराम की घोषणा के बावजूद रास अल आइन इलाके में सुबह को रुक रुक कर बमबारी और झड़पें होने की खबरें मिल रही थीं। हालांकि अन्य इलाकों में स्थिति कुछ शांत और बेहतर बताई गई है। संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न एजेंसियों ने जिनेवा में पत्रकारों को ताज़ा स्थिति के बारे में अवगत कराते हुए कहा कि प्रभावित इलाकों में बुनियादी सेवाएं मुहैया कराने की कोशिश की जा रही है। जहां जहां भी संयुक्त राष्ट्र और उसकी साझेदार एजेंसियाँ पहुँचने में कामयाब हो पा रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रभावित इलाकों में लोगों की ज़रूरतें देखते हुए मानवीय सहायता कार्य और ज़्यादा तेज करने की अपील जारी की है।
हेती में 15 वर्ष से चला आ रहा संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा अभियान मंगलवार को समाप्त हो गया, लेकिन देश में स्थिरता और लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का संकल्प जारी रहेगा। बुधवार 15 अक्टूबर से हेती में संयुक्त राष्ट्र एकीकृत कार्यालय में कामकाज शुरू हुआ है, जो देश में स्थिरता और सुशासन के साथ साथ समावेशी राष्ट्रीय संवाद को सहारा देने पर केंद्रित है। विस्तृत जानकारी के साथ शिवानी काला।
हेती में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा अभियान की शुरुआत वर्ष 2004 में यूएन स्थिरता मिशन के साथ हुई थी, जिसे वहां बदहाल होती राजनीतिक और सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर स्थापित किया गया था। यूएन मिशन का कार्यकाल वर्ष 2017 में पूरा हो गया, जिसके बाद वहां एक अन्य मिशन शुरू किया गया था। उसका उद्देश्य हेती की राष्ट्र पुलिस, कानून का राज स्थापित करने वाली संस्थाओं और मानवाधिकारों को मजबूती और बढ़ावा देना था। 15 अक्टूबर को हेती में संयुक्त राष्ट्र एकीकृत कार्यालय में कामकाज शुरू हो गया, जिसका लक्ष्य राजनीतिक स्थिरता और सुशासन को मजबूत बनाने के साथ साथ समावेशी राष्ट्रीय संवाद को सहारा देना है। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के अवर महासचिव ज़ियां पियरे लाकुआ ने कहा,
Well, I think it's important to highlight before everything that UN peacekeeping is leaving Haiti, but the UN is not leaving Haiti.
ये ध्यान दिलाया जाना बहुत अहम है कि UN शांति रक्षा मिशन हेती से विदाई तो ले रहा है, मगर असल में हेती में संयुक्त राष्ट्र का सहयोग व समर्थन जारी रहेगा, कुछ बदले हुए रूपों में, लेकिन पहले जैसे ही संकल्प के साथ।
ये थे अवर महासचिव लाकुआ के शब्द। संयुक्त राष्ट्र के दो शांति रक्षा मिशनों ने हेती की प्रगति में जो योगदान दिया है, उसमें पुलिस और न्यायिक सेवा को मजबूत बनाने और सामुदायिक हिंसा में कमी लाने के लिए कार्यक्रम लागू करना शामिल है। इससे देश में राजनीतिक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जड़ें मजबूत कराने में सहायक माहौल बनाने में मदद मिली है, लेकिन राजनीतिक समाधानों की आवश्यकता को भी स्पष्ट किया गया है। मौजूदा दौर में हेती एक राजनीतिक संकट से जूझ रहा है और हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर राष्ट्रपति शिवनेल मोइज के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 15 सितंबर 2019 के बाद से अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है। यूएन ब्यूरो का संचालन शांति रक्षा से शांति निर्माण तक के संक्रमण को रेखांकित करेगा और कार्यालय में ऐसे मापदंड लागू किए जाएंगे जो टिकाऊ विकास लक्ष्यों के संदर्भ में हैं।
तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही। सचिन गौड़ को अनुमति दीजिए। नमस्कार।